हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 6, 7 एंड 8। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद नवा अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। जैसा कि हमने सुना कि महाराजा युधिष्ठिर युद्ध के कारण जो हत्याएं हुई थी उनके कारण अत्यंत ही दुखी थे और अपने आप को अपराधी मान रहे थे, किसी तरह से समझाने से भी नहीं समझ रहे थे। तो भगवान उनको भीष्म पितामह के पास लेकर जा रहे हैं उनसे समझवाने के लिए। उनसे प्रवचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज के दुखी हृदय पर शांति उनको प्राप्त होगी। इसलिए तदा ते भारत भ्रातरः सर्वे सदश्वेसर भूषते अन्वगच्छन रथे विप्रा व्यास धौम्यादय तथा। तो सुख गोस्वामी कहते हैं कि फिर व्यास मुनि, वेद व्यास जी, धौम्य ऋषि सब ऋषियों के साथ मिलकर वो युधिष्ठिर महाराज अपने सारे भाइयों को लेकर हस्तिनापुर की ओर, सॉरी कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं और वहां पर भगवान अपनी सर्वे विप्रशे रथेन सधनंजय, भगवान भी धनंजय का सारथी बनकर वहां पर जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कुबेर यक्षों के साथ गिरे हुए दिखते हैं। और उस समय जब उन्होंने भीष्म पितामह के दर्शन किए तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग का कोई देवता आकर भूमि पर लेटा हुआ है। और उस समय जब महाराजा युधिष्ठिर अपने भाई और कृष्ण और व्यास इत्यादि के साथ आए थे तो उस समय सुख गोस्वामी कहते हैं तत्र ब्रह्म ऋषय सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन दृष्टम भरत पुंगव। उस समय संसार के समस्त ब्रह्म ऋषि, बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, सर्वे जितने भी थे सारे के सारे देवर्षि, सारे जितने देव, यानी एक तो पहले से देवता, अब संसार में भी देखो हम मनुष्य होते हैं और मनुष्यों के भी ऋषि होते हैं, लेकिन वो देवता होते हैं, पहले से ही देवता होते हैं यानी टोटली सत्वगुणी, और उनमें भी जो ऋषि होते हैं, और वो सारे आए थे कहां पर, कुरुक्षेत्र में। क्यों? धर्म का प्रवचन सुनने के लिए। राजर्षय, बड़े बड़े राजा जो कि ऋषियों का सा आचरण करते हैं, भीष्म पितामह स्वयं भी राजऋषि थे। तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवा, और वो वहां पर सब आए थे, एकत्रित हुए थे राजा भरत के जो वंशज हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है अर्थात भीष्म पितामह को देखने के लिए और उनका प्रवचन सुनने के लिए। और आज सुत गोस्वामी उन महान व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं जो जो आए थे उनका दर्शन करने के लिए और उनका प्रवचन सुनने के लिए। सुत गोस्वामी कहते हैं पर्वतो नारदो धाम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत वसिष्ठ इंद्र प्रमद त्रितोग्रत समदोषित कक्षीवान गौतमो त्रिश्च कौशिकोथ सुदर्शन पर्वतो नारदो धाम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत वसिष्ठ इंद्र प्रमद त्रितोग्रत समदोषित कक्षीवान गौतमो त्रिश्च कौशिकोथ सुदर्शन। अर्थात पर्वतो, ये सब ऋषियों के नाम गिना रहे हैं। पर्वतो, पर्वत मुनि वो ऋषि थे जो नारद मुनि के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, सदैव नारद मुनि के साथ रहते। नारद मुनि, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना देवर्षि, तो नारद मुनि देवताओं के ऋषि थे, जितने भी देवता थे उनके ऋषि थे, वो भी आए थे। धौम्य मुनि जो ये पांडव थे उनके कुलपति, कुल के ऋषि थे। और भगवान बादरायण, बादरायण भगवान मतलब वेद व्यास जी, जिन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का संकलन किया है, वो स्वयं आए थे। बृहदश्व दूसरे ऋषि थे, बृहदश्व जिनका नाम था। और भरद्वाज, भरद्वाज मुनि भी थे। सशिष्यो, सशिष्यो सबके साथ लगेगा, ठीक है, कैसे, पर्वत मुनि सशिष्यो, नारद सशिष्यो, धौम्य सशिष्यो, बादरायण सशिष्यो, भरद्वाज सशिष्यो, भरद्वाज सशिष्यो, सशिष्यो रेणुकासुत। रेणुकासुत किसको पता है, किसका नाम है, जो रेणुका जी के पुत्र थे अर्थात भगवान परशुराम। भगवान परशुराम जो कि भीष्म पितामह के गुरु महाराज थे, जानते ना आप, तो वो भगवान परशुराम भी आए थे और सारे जितने भी दूसरे ऋषियों के अभी नाम गिना रहे हैं वो सब भी आए थे अपने अपने शिष्यों को लेकर। मतलब सारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब अपने शिष्यों के साथ क्यों आए थे? प्रवचन सुनने के लिए। अभी ये रेणुका सुत लिखा गया ना, सशिष्यो रेणुका सुत, वैसे तो पितामह के गुरु थे परशुराम, परंतु इन दिनों भीष्म पितामह का उनके साथ कुछ तनाव चल रहा था, क्योंकि जब भीष्म पितामह ने 3 राजकुमारियों को लेकर आए थे और उनके भाइयों को कहा था, चित्रांगद और विचित्रवीर को, अंबा अंबिका और अंबालिका को लेकर आए थे विवाह करने के लिए, उनमें से अंबा ने कहा कि मैं तो किसी और से प्रेम करती हूँ तो मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। भीष्म पितामह ने उन्हें सम्मान के साथ भेज दिया कि ठीक है, अगर आप किसी और से प्रेम करते हो तो मैं आपको विवश नहीं करूंगा मेरे भाई के साथ शादी करने के लिए, आप चले जाओ। लेकिन जब वो वापस गई अपने प्रेमी के पास तो उस राजकुमार ने उन्हें तिरस्कार कर दिया, बोला मैं आपको आपके साथ विवाह नहीं करूंगा, मैं प्रेम करता था लेकिन अब तो आप ऐसा लगता है जैसे हारी हुई वस्तु है, मैंने आपको हरा दिया, अभी मैं आपको आपके साथ शादी नहीं करूंगा। उसको बहुत दुख हुआ अंबा को, और भीष्म पितामह से कहा कि अब आपने क्योंकि मुझे वहां से उठाया था स्वयंवर से, मैं तो शादी करने वाली थी उसके साथ, लेकिन आपने मुझे वहां से उठाया लेकर आया, अभी आप मेरे साथ शादी करो। भीष्म पितामह ने मना कर दिया, बोला मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। और एक रूल होता है कि स्वयंवर उसी राजकन्या का होना चाहिए जो किसी से प्रेम नहीं करती है, पहले से किसी के साथ ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम था तो आपको स्वयंवर में आने की क्या जरूरत थी? लेकिन अभी भी आपको जिस आपने बोला कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैंने आपको छोड़ दिया, मैं तो शादी नहीं करूंगा आपके साथ। तो फिर अंबा को बहुत गुस्सा है क्योंकि उसका अपना प्रेमी जो राजकुमार था वो भी उसे नहीं स्वीकार कर रहा था, भीष्म भी उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो फिर उसने कहा कि मैं क्या करूं, वो परशुराम के पास गई रेणुका सुत, और परशुराम से कहा कि अपने शिष्य को समझाओ कि वो मेरे साथ शादी करे, क्योंकि वो मुझे वहां से लेकर आया, अभी मेरे साथ विवाह भी नहीं कर रहा है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई ना। तो परशुराम ने समझाया भीष्म पितामह को कि आप इससे विवाह करो। परशुराम हालांकि भीष्म पितामह के गुरु थे, लेकिन भीष्म पितामह क्या करते, उन्होंने कोई विवाह करने के लिए उसे थोड़ी वहां से उठाया था और कुछ बुरा थोड़ी करा, उसको लेकर आए थे और जैसे ही उन्हें पता चला वो सम्मान के साथ उसको वापस छोड़ के आए। तो बोला अपने गुरु महाराज को कि भले आप जो भी बोलो, लेकिन क्योंकि मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो शादी नहीं करूंगा इनके साथ। तो बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया भीष्म पितामह और उनके गुरु महाराज रेणुका सुत जो ये परशुराम है। युद्ध इतना निर्विशेष था कि कोई नहीं आ रहा था, न भीष्म पितामह हार रहे थे और न ही परशुराम जी। फिर वहां पर नारद जी आए और उनकी सलाह करवाई, युद्ध खत्म करवाया। लेकिन ये अभी उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मान नहीं रहे थे ना परशुराम की बात, तो फिर परशुराम उनसे थोड़ा सा ऐसे नाराज रहते थे। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि अब भीष्म पितामह प्रवचन दे रहे हैं तो वो शिष्य रेणुका सुत अपने सारे शिष्यों के साथ वहां पर आए, स्वयं भगवान के अवतार परशुराम। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था किसी को, और ना ही वहां पर 3 टाइम महाप्रसाद की सुविधा थी, कोई भी सेटिंग नहीं थी, कोई भी पहले से प्रिपेयरिंग नहीं की गई थी। वहां पर एक कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा युद्ध स्थल था, वृक्ष के नीचे बैठकर भागवतम सुनने के लिए किसी ने ये विचार भी नहीं किया कि हमें तो किसी ने बुलाया भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं, किसी ने कोई दुख नहीं किया। ये देखिए भागवतम में अध्यात्म में जो अग्रसर जो व्यक्ति होते हैं हमेशा अपने कृष्ण प्रेम को बढ़ाने के फेर में रहते हैं, यही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। वो कुछ भी करता है, कहीं भी जाता है, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि मैं ये कार्य करूं उससे मेरे कृष्ण प्रेम में उन्नति हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपना धन बढ़ाने के फेर में होते हैं, हर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि बस मेरे पास धन ज्यादा होना चाहिए। उसी प्रकार भक्त जो होता है वो सदा चिंतित रहता है कि मैं क्या ऐसा करूं, कि कैसे कुछ ऐसा करूं कि मेरा कृष्ण प्रेम बढ़े, कृष्ण के प्रति मेरी आसक्ति बढ़े, मेरी कृष्ण प्रेम में उन्नति हो। इसलिए तो ये सब इतने बड़े बड़े भक्त और ज्ञानी आ रहे हैं, क्यों? सुनने के लिए। और सब अपने शिष्यों को लेकर आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, क्या जरूरत है नारद मुनि को, धौम्य मुनि को, भरद्वाज व्यास देव को जाकर वहां क्षत्रिय के पास जाके सुन रहे? नारद जी क्या वहां बैठने लायक थे? साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ये प्रथम शिष्य हैं ब्रह्मा जी के, भगवान के शक्ति आवेश अवतार है वेद व्यास जी, जिन्होंने समस्त शास्त्रों की रचना की है, और वेद व्यास जी के गुरु हैं नारद मुनि, वो सुनने के लिए आकर बैठ रहे हैं यहाँ। और एक क्षत्रिय से, वो तो देवताओं के भी ऋषि हैं, पर वहां उनको ये अभिमान नहीं आया कि मैं तो कितना बड़ा देवताओं का ऋषि हूँ, मैं कहाँ जाऊं, भीष्म पितामह अभी वो वहां पर प्रचार कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, तो मैं क्या, मुझे क्या जरूरत है सुनने की। भक्त का केवल एक ही इच्छा, केवल एक ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है कि जहां हमारी कृष्ण भक्ति बढ़े वहां जाना ही है। वहां वो संसारी व्यवहार नहीं देखते। भगवान परशुराम ने ये नहीं देखा कि भीष्म तो मेरा शिष्य है, उसने तो अपनी गुरु आज्ञा की भी अवज्ञा की, मेरी बात भी नहीं मानी, अम्बा के साथ विवाह भी नहीं किया, इसे छोड़ो, रिजेक्ट करो ऐसे शिष्य को। और ना ही उन्होंने दूसरों को बोला कि क्या आप भी भीष्म से सुनने जा रहे हो, वो क्या सुनाएगा, वो तो खुद अपने गुरु की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, उससे क्या सुनना। मतलब चलो संसारी विषय में यदि कोई झगड़ा हो भी, तो भी वो जगह जहाँ पर भगवान के विषय में हमें प्योर ज्ञान मिलने वाला है, जहाँ से हमें वास्तव में पता है कि यहाँ जाने से हमारे कृष्ण प्रेम में उन्नति होगी, वहाँ पर अपने समस्त अहंकार को, अपने समस्त अभिमान को छोड़कर अवश्य जाना चाहिए। भगवान के विषय में सुनने में कोई भी संसारी विचार नहीं करना चाहिए। और ये सारे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आ रहे हैं, आगे नाम बता रहे हैं, वशिष्ठ इंद्र प्रमदः वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि जानते कौन थे? श्री राम जी के कुलगुरु थे वशिष्ठ मुनि। और इंद्र प्रमदः, ये इंद्र देवराज जो इंद्र हैं उनके बहुत गहरे मित्र थे, और इंद्र के साथ बैठकर वो अक्सर मदुरा का पान करते थे, या फिर मतलब उनके साथ ही होते थे। और त्रितो ये तीन भाई थे, एकम द्वितो और त्रितो, तीनों भाई। अब त्रितो लिखा हुआ ऐसा शिष्य, यानी तीनों भाई एक साथ आए होंगे। ग्रत्समद ये ऋषि भी आए थे। कक्षीवान गौतमोत्रश्च, कक्षीवान ऋषि आए थे, गौतम ऋषि जो अहल्या के पति थे ना वो आए थे, और अत्रि जो अनुसुईया के पति थे वो भी आए थे, दत्तात्रेय के पिताजी, दत्तात्रेय भगवान के पिताजी यहाँ पर आए थे। कौशिक मुनि भी आए थे, और सुदर्शन मुनि भी आए थे। यानी इतने बड़े बड़े सारे जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, चाहे वो देव ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि थे, राज ऋषि थे, वो सारे के सारे अपने सारे शिष्यों के साथ आए थे यहाँ पर। और आज क्या होता है, आजकल तो ये युग इतना बिगड़ गया है कि किसी को भगवान के विषय में श्रवण करने के अंदर कोई रुचि नहीं है। कोई यदि सुनाने वाला होगा ना, तो जो भोंगे से भोंगे लोग होंगे ना, वो भी बोलेंगे नहीं नहीं असंग, हमें तो ये सब पहले से पता है, भगवान है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान हमें सब पहले से पता है। मतलब जो थर्ड क्लास का अज्ञानी जीव होगा ना, वो भी, उसके भी कोई ना कोई थर्ड क्लास के उससे भी घिरे हुए जो शिष्य होंगे ना, वो भी कहीं पर पता चलेगा कि भाई यहाँ पर एज इट इज हमें सुनाया जाएगा, शास्त्र के बारे में बताया जाएगा, भागवत का प्रचार हो रहा है, तो फौरन से जो बता रहा होगा ना, और भी उसके अंदर हजारों अवगुण बता देंगे कि नहीं नहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं ना, हम बिल्कुल ठीक कर। ये सारे ऋषि मुनि जो यहाँ पर आ रहे हैं, क्या वो अपने अपने आश्रमों में बैठकर भजन नहीं कर रहे होंगे? डेफिनेटली उनके जीवन का लक्ष्य ही क्या है? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। तो सब अपने अपने आश्रम में बैठकर भजन कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, लेकिन श्रवण करने का अवसर वो नहीं छोड़ना चाहते। आश्रमों की बात क्या, इनमें से कई तो स्वर्ग में रहते थे, कश्यप, नारद मुनि और है ना, ये सब इतने सारे ऋषि मुनि, देवर्षि इत्यादि, ये तो स्वर्ग का सुख छोड़कर आए हैं कि हमें भगवान के विषय में श्रवण करना है, भगवान के विषय में श्रवण करना है, अपने कृष्ण प्रेम को बढ़ाना है। और आज हम क्या होते हैं, एक ड्रामा होता है हमारी पसंद का, हम बोले नहीं ये ड्रामे के टाइम पर सत्संग रखते हैं ना, मैं ही नहीं जाऊंगी, 8:30 बजे क्यों रखते हैं, ये तो मैंने ड्रामा देख, क्या मतलब, हमें इम्पोर्टेंस ही नहीं पता कि वास्तव में हमारे जीवन की क्या इम्पोर्टेंस है, हम अपने जीवन को किस तरह से फिजूल कामों में बर्बाद कर रहे हैं। वास्तविक जीवन का लक्ष्य है भगवान के विषय में श्रवण करना, और यही ये सारे ऋषि मुनि आज यहाँ पर आ रहे हैं भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए, तो हमें साबित कर रहे हैं कि श्रवण करना कितना आवश्यक है, कितना रेयर है, कितना जरूरी है कृष्ण प्रेम बढ़ाने के लिए। केवल एक ही उपाय है कि हम भगवान के विषय में श्रवण करें। अनुवाद, पर्वत मुनि, नारद, भाम्य, ईश्वरात अवतार व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रिता, ग्रित समदह, अस्ति, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां पर उपस्थित थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। अब चूंकि बहुत बहुत महान महान ऋषियों के यहाँ पर नाम है, तो श्रील प्रभुपाद जी हमें सबका परिचय देंगे, क्योंकि इन महान आत्माओं के विषय में श्रवण करने से भी हमारे हृदय पवित्र होता है, और क्योंकि ये स्वयं कृष्ण प्रेम के प्रति इतना आकर्षित हैं, तो इनके विषय में श्रवण करके हमारे हृदय में भी जो कृष्ण का प्रेम बहुत सुप्त अवस्था में है वो जागने लगता है। तो इनके विषय में आज हम कुछ जानेंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पर्वत मुनि सबसे प्राचीन मुनि माने जाते हैं, वे नारद मुनि के निरंतर संगी हैं, वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो किसी भौतिक यान के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ हैं। पर्वत मुनि भी नारद के समान ही देवर्षि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र, महाराज जन्मेजय के यज्ञ में, यज्ञ के समय नारद के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के सारे सर्पों का विनाश होना था। पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वे आकाश में भगवान की महिमा का गायन करते हुए विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर पति का चुनाव देखा था। नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी कुबेर नाम के सुप्रसिद्ध देवता के राज दरबार में जाते थे। एक बार नारद तथा पर्वत दोनों के ही सामने महाराजा श्रींजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। महाराज श्रींजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। तो ये था परिचय पर्वत मुनि का, जो कि देवऋषि नारद के मित्र थे और अंतरिक्ष यात्री थे, यानी कि वो भी जिस प्रकार देवऋषि वायु में जाते हैं और जगह जगह जाते हैं, गान करते हैं भगवान के नाम का, ऐसे ऋषि थे। और जब परीक्षित महाराज को सर्प ने डस लिया था, तो उनके पुत्र जन्मेजय ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि सारे संसार के सारे सर्पों का मैं विनाश कर दूंगा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था जिसमें सारे सर्पों का विनाश हुआ था। तो नारद मुनि और ये पर्वत मुनि दोनों ने मिलकर इस यज्ञ में भाग लिया था। अब आगे नारद मुनि के विषय में बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, कहते हैं कैसे भक्तों नारद मुनि के विषय में बात करते हुए इतना अच्छा लगता है, क्योंकि नारद मुनि जो है ना वो भगवान की तरह अद्भुत कर्म करते हैं। वास्तव में मैं आपको बताऊं, कि भगवान का अवतार कराने वालों में प्रथम स्थान है नारद जी का। मतलब जितना जल्दी संभव हो भगवान का अवतार होना चाहिए, और इस भगवान के अवतार होने कराने के लिए कितनी बदनामी सहते हैं वो। अब देखो, जब देवकी और वसुदेव का विवाह हो गया, उस टाइम पर आकाशवाणी हो गई कि आपका आठवां पुत्र, देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा कंस। तो कंस ने सोचा कि मैं देवकी को ही मार देता हूँ। नारद मुनि ने समझाया, देवकी को क्यों मार रहे हो, इसके पुत्र को मारना, पुत्र तो पैदा होने दो। यानी यहाँ पर वो आके सुरक्षा कर रहे हैं महारानी देवकी का। और जैसे पहला पुत्र पैदा हुआ तो कंस ने सोचा, कंस के हृदय में पता नहीं दया कहाँ से आई, उसने सोचा कि अभी आठवां पुत्र मेरा वध करेगा ना, तो मैं पहले पुत्र को क्यों मारूं। उसने छोड़ दिया, वासुदेव को बोला ले जाओ इसको, ये इसको, इससे मेरी कोई शत्रुता नहीं है। नारद मुनि ने देखा कि कंस के हृदय में दया, भगवान ने यदि देख ली कि कंस मेरी माता पिता के ऊपर इतनी दया करेगा, इतनी कृपा कर रहा है, तो भगवान के हृदय में तो इतनी करुणा है, वो तो वध ही नहीं करेगा इसका, अवतार लेना कैंसल। नहीं बाबा, इसके हृदय में दया नहीं होनी चाहिए। कंस को जाके बोलो, पागल हो गए हो, ये विष्णु कितना चालाक है समझते नहीं हो, बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हो तुम। वो पहली बार आए या आठवीं बार आए, उससे उस पे कभी भी आप ना यकीन नहीं करना। वो कोई कभी भी टाइम पर आ सकता है, सबको मारो, जो भी पैदा होता है मारते जाओ। और फिर इतनी बदनामी, हालांकि क्योंकि अपराध इतने बढ़ गए थे कंस के कि अब एक एक क्षण जो है वो बहुत ज्यादा विपत्ति में जा रहा था, इसलिए वो चाहते थे कि भगवान का अवतार बहुत जल्दी से होना चाहिए। फिर जब पुत्र उत्पन्न हो गए और आठवां पुत्र भी उत्पन्न हो गया, फिर जाके कंस को कहा नारद मुनि ने कि आपको क्या लगता है, विष्णु ने अवतार नहीं लिया? विष्णु ने अवतार लिया है। वो जो कन्या तुमने मारी थी ना, जो ऊपर चली गई थी, वो तो यशोदा की पुत्री थी। वास्तव में जो देवकी का आठवां पुत्र है वो नंद के पास रह गया है, नंद के पास वासुदेव उसको छोड़ कर आए हैं। तुम जाके उसको मारो ना, तो उसको मारने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हो। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा कोई अभी है ही नहीं, विष्णु ने अवतार ही नहीं लिया, वही तो है। और छठा सातवां गर्भ जो सूख गया था वो भी रोहिणी के पुत्र के रूप में वहां पर पल रहा है, वो दोनों है तुम्हारे, तुम्हारी हत्या उन्हीं के द्वारा होगी, उन दोनों को मारो। तो कंस ने सोचा आप सही बोल रहे हो, सबसे पहले तो मैं वासुदेव और देवकी को मारूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे साथ विश्वासघात किया, इन्होंने मुझे बोला था कि हर पुत्र दूंगा और इन्होंने ये दोनों पुत्र मुझे नहीं दिए। नारद मुनि ने नहीं 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 पागल हो गया, इनको नहीं मारना, इनको नहीं मारना, क्योंकि नारद मुनि जानते थे कि भगवान के माता पिता, और उनको समझा रहे देखो ये तो उनके माता पिता है ना, इनको तुम मार दोगे तो फिर क्या होगा कि वो आएंगी नहीं, छुप जाएंगे और छुप कर कहीं से आके तुम पर वार कर देंगे, मारेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तुम क्या, क्योंकि इन ये तुम्हारे पास है, तो कभी ना कभी तुम किसी को भी भेजोगे ना, अक्रूर को भेजो, किसी को भी भेजो, उनको लेकर आए यहाँ पर लेकर आएंगे तो तुम उनको कितना आसानी से मरवा दोगे, कि तो तुम्हारी राजधानी है। यहाँ पर कंस को ये बात समझ में ना आई कि आकाशवाणी ने बोल दिया है कि तुम्हारी मृत्यु आठवें पुत्र से होगी, तो होगी ना, उससे दूर रहूं। लेकिन नारद मुनि ने ऐसा उनको पट्टी पढ़ाई कि अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाया, आ जाओ, अक्रूर को भेजा, लेके आओ उन दोनों को। यानी कि ये जो मृत्यु आती है ना, विनाश जब जीव का होने वाला होता है ना, तब वो हाथ में कोई छुरी तलवार या ये रिवॉल्वर लेकर नहीं आती। क्या होता है, विनाश गाले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो नारद मुनि जो है वो इस तरह से उन अधर्मियों की बुद्धि भ्रष्ट करते थे और भगवान की सहायता करते थे कि कैसे जल्द से जल्द भगवान का अवतार हो इस संसार में, हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए, अधर्म का नाश होने। वो बड़ी बदनामी सहते थे, बहुत बदनामी लोग करते हैं, भाई ये तो नारद है, इधर की खबर उधर पहुंचाता है, इधर की खबर उधर पहुंचाता है। लेकिन वास्तव में ये अद्भुत कार्य है, भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके कार्य भी भगवान की तरह अद्भुत होते हैं, जो हमारी साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आते। इनके विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, पुराणों की कथाओं से नारद मुनि का अनिर्वाय संबंध है। उनका वर्णन भागवतम में किया गया है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से उनमें भक्ति जगी और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध व्यक्ति बने। महाभारत में उनका कई स्थानों पर उल्लेख है। वे प्रमुख देवर्षि हैं, वे ब्रह्मा जी के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की परंपरा चलती है। उन्होंने प्रहलाद महाराज, दुरु महाराज तथा अनेक विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षा दी। यहाँ तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रेरणा वेद व्यास जी को भी दीक्षा दी। व्यास देव से ही मध्वाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है, सारे विश्व में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से है। अतएव ब्रह्मा जी, नारद, व्यास से लेकर मध्व, चैतन्य तथा षड गोस्वामी, ये सारे एक ही शिष्य परंपरा से संबंधित थे। नारद जी ने अनादिकाल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। भागवत में हम उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया। यहाँ पर नारद मुनि की महानता बताते हुए श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए ना, वो सब नारद मुनि के शिष्य हैं। एक तरह से प्रहलाद हो, ध्रुव हो, उन सब दूसरे सारे शिष्यों को तो छोड़ ही दीजिए, जो संसार के मुख्य प्रवक्ता हैं, जिन्होंने संपूर्ण जितने भी वेद हैं उनका संकलन किया, वो जगत गुरु वेद व्यास जी भी उनके शिष्य हैं, और तो दूसरों का कहना ही क्या। तो इतने महान, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जिस शास्त्र ऐसा कहता है कि जिस जिसके हृदय में आज भगवत प्रेम है, कहीं ना कहीं नारद मुनि की कृपा है, क्योंकि जो उन्होंने ही जीवों को भक्ति की प्रथम शिक्षा दी है, वो स्वयं नारद मुनि जो देवताओं के ऋषि हैं, वो आए हैं आज भीष्म पितामह से प्रवचन सुनने के लिए। आगे पर्वतो नारदो धाम्यो, धाम्य ऋषि के बारे में बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। कहते हैं, ये एक ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचिक तीर्थ में कठिन तपस्या की। उन्हें पांडव राजाओं का राजपुरोहित नियुक्त किया गया था। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिती की और द्रौपदी की सगाई के समय वे हर पांडव के साथ रहे। वे पांडव के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो वे उन्हें उपदेश दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार एक वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए, और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामान्य शव यात्रा संपन्न हुई तो भी उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में 1-7.15 और 16 में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को लंबा सा उपदेश दिया है। वे ग्रस्थों के वास्तविक पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के सही मार्ग का निर्देश कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म के सही मार्ग पर क्रमशः अग्रसर कराना। यहाँ पर पुरोहित का सही मतलब बता रहे श्री प्रभुपाद जी। कहते हैं, पुरोहित का मतलब होता है हित करने वाला। प्रो माना ये जो पूरा कुल है, जैसे हर कुल का कोई ना कोई पुरोहित होता है, तो उसका कार्य क्या होता है कि वहां पर जितने भी जीव हैं उनको बताए कि आपका हित कैसे होगा, आपने जो ये गृहस्थ धर्म जो इस आश्रम में है, आप उसको आप कैसे कार्य करो उसके अंदर, कि आपका हित हो, आपका कल्याण हो, आपका जीवन सफल। लेकिन आजकल के जो पुरोहित होते हैं ना, हर एक घर में कुल में कोई ना कोई पुरोहित होता है, वो कुल का पुरोहित उसका हित नहीं करना चाहता, केवल अपना हित करना चाहता है। मेरी जेब गर्म रहनी चाहिए बस, तुम्हारा कल्याण हो या बाहर में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बहुत ही सुंदर उपदेश देते थे। अब पत्नी एक थी, पांच पति थे, और उनको किस तरह से गृहस्थ आश्रम में गुजारना है वो बहुत ही सुंदर रीति से वो उनको उपदेश देते थे। और पांडवगण उनका बहुत कठोरता से पालन भी करते थे। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक कुल पुरोहित तथा गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता, ऋषि मुनि संत तथा ब्राह्मण ऐसे ही कार्यों के लिए हुआ करते हैं। तो यहाँ पर धौम्य ऋषि के बारे में बताया, उसके बाद है भगवान बादरायण। बादरायण भगवान व्यास देव जी, जिनकी अनुकंपा से आज हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, उनके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वे कृष्ण कृष्ण द्वैपायन द्वैपायन सत्यवती सुत पराशरायः पराशरा मज बादरायण वेदव्यास आदि नामों से विख्यात हैं। वे महान सेनापति पितामह भीष्म के पिता महाराज शांतनु से अपनी माता सत्यवती के गर्भ से उनकी सगाई होने के पूर्व ही महामुनि पराशर द्वारा उत्पन्न हुए थे। वे नारायण के शक्तियावेश अवतार हैं और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रचार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है तो व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त शैंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य भारत महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ भागवतम के लेखक हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संग्रह किया। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित लेखक हैं। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याण अर्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा तो उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके श्रुत लेख को अंकित करता जाए। ब्रह्मा के आदेश से श्री गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार किया कि व्यास देव एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। इस प्रकार महाभारत व्यास तथा गणेश के संयुक्त प्रयास से संग्रहित हुई। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कितनी महानता है बादरायण भगवान वेदव्यास जी की। उन्होंने हमारे जीवन को वास्तविक जीवन बनाने में हमारी सहायता की। समस्त शास्त्रों का उन्होंने लिपिबद्ध किया। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। जब वो इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा हो लेखक जो लिखता जाए। तब गणपति को उन्होंने नियुक्त किया और गणपति ने ये शर्त रखी थी कि आप बोलते जाओगे और मैं लिखता जाऊंगा, आप रुकोगे नहीं, रुकोगे तो फिर बस मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो उन्होंने भी ये शर्त रखी कि ठीक है मैं बोलता जाऊंगा, तुम लिखते जाना, लेकिन एक शर्त मेरी है कि जब तक अगर तुम्हें बात सही तरह से समझ में नहीं आई ना वो बात नहीं लिखना। तो फिर जब उनको कोई सोचना होता था, अब हम क्या करते हैं, एक श्लोक याद करते हैं उसको बताते हैं तो उसमें भी अटकते हैं। वो तो श्लोक का निर्माण कर रहे थे, जहां से बातें सोचना पड़ता था बीच में, और जब सोचना पड़ता था तो कोई ऐसा एकदम मुश्किल श्लोक दे देते थे कि गणपति उसको सोचते रहते थे और तब तक वो दूसरे श्लोकों की रचना कर देते थे। अत्यंत ही सुंदर रीति से उन्होंने मिलकर महाभारत का संग्रह किया। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अपनी माता सत्यवती के आदेश से जो बाद में शांतनु से ब्याही गई तथा महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शांतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्म के अनुरोध से व्यास देव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम हैं धृतराष्ट्र पांडव तथा विदुर। इनके विषय में मैंने आपको पहले बताया था कि क्योंकि सत्यवती के दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्र वीर्य की भी मृत्यु हो गई। अब उनके यहाँ पर कोई भी राज सिंहासन को संभालने वाला उत्तराधिकारी नहीं था, तो सत्यवती ने अपने पुत्र, ये पुत्र थे वेदव्यास जी उनके, और उनको जाके बुलाया कि आप आइए और मेरी बहुओं को पुत्र प्रदान कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए कि उनको पुत्र प्राप्त हो। तो उनके आशीर्वाद से इनकी बहुओं को, यानी अंबिका और अंबालिका को, दो पुत्र पैदा हुए थे, धृतराष्ट्र और पांडव, और उनकी एक दासी थी, उनको विदुर उत्पन्न हुए थे। तो ये तीनों पुत्र जो है वो वेदव्यास जी के थे। वेदव्यास जी ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद तथा महाभारत के सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद महाभारत की रचना की। सर्वप्रथम महाराजा परीक्षित के पुत्र महाराजा जनमेजय जी के राज दरबार में इसे सुनाया गया। महाभारत की रचना करने के बाद उनको सुनाया गया उनके पुत्र को। आगे बृहद अश्व, ये एक प्राचीन मुनि थे जो महाराजा युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराजा युधिष्ठिर के काम्य वन में मिले थे। इन्होंने महाराजा नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य बृहद अश्व भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। महाभारत 1 पर्व 201.4 और 5। इनके विषय में इतना ज्यादा लिखा नहीं है, बस ये बताया है कि वो युधिष्ठिर महाराज से मिलते रहते थे और उनको अक्सर बताया करते थे। बहुत बड़े ऋषि थे वो भी, प्राचीन मुनि थे। भरद्वाज, ये महान सप्त ऋषियों में से एक है। सप्त ऋषि है ना, जो शुरू के स्टार्ट के, उनमें से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी, भरद्वाज मुनि के विषय में बता रहे हैं, और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तो स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा घृताची से इनकी भेंट हुई। इससे उनका वीर्य स्वखिलित हुआ, जिससे कि एक मिट्टी के बर्तन में रखा गया, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में रखा गया था, जिसे द्रोण उत्पन्न हुआ। इस तरह द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। मतलब कोई बोलते हैं कि ये वही वाले भरद्वाज मुनि हैं जो कि ना ये सप्त ऋषियों में से एक है। कोई लोग बोलते नहीं, वो दूसरे थे, कोई और है। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए थे और उन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया था। और इनके बाद है बृहदश्व भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुत, रेणुका के सूत्र, परशुराम या रेणुका सुत। ये महर्षि जमद अग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। वे रेणुका सुत भी कहलाते हैं। वे ईश्वर की शक्ति आवेश अवतार थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया था। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया था। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से क्षीण कर कश्यप मुनि को दान में दिया था। क्षत्रियों से छीन कर कश्यप मुनि को दान में दे दिया था। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की थी, क्योंकि वह ब्राह्मण था। वे महाराज युधिष्ठिर के राजतिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में भाग लिया था। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में राम कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने राम से युद्ध किया था, लेकिन कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने जब अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्म ने विवाह की इच्छुक अंबा से विवाह करने से इनकार किया था, तो लंबा सॉरी हरिबोल किया था तो अम्बा परशुराम से मिली थी और इसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्म देव से उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए कहा था। अपना गुरु होते हुए भी भीष्म देव ने उनकी बात नहीं मानी थी, अतः परशुराम ने उनसे युद्ध किया था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम ने भीष्म को विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया था। आगे हैं वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ देव कहलाते हैं। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्ति हैं। उन्होंने भगवान श्री राम का राजतिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकश्यपु के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत वैर था क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहता था। जब